ओम शांति। आज मार्गदर्शन में हमारे बीच दीदी से संवाद करने के लिए और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उपस्थित हैं पांच जोड़े। दांपत्य जीवन के सुखमय होने का आधार क्या है, कैसे हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करें ताकि हमारा जीवन और हमारे आने वाली पीढ़ी पर भी इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव रहे। गृहस्थ जीवन अन्य जीवन की तरह ही बड़ा महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ जीवन माना जाता है, क्योंकि यहां रहते हुए भी आदमी सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करने के साथ ही साथ आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन भी जी सकता है। सुसंस्कृति का वातावरण इसी परिवार से निर्मित होता है और कलह का वातावरण भी इसी परिवार से निर्मित होता है। कभी कभार कलह का वातावरण तो ऐसा हो जाता है कि आस पड़ोस तक भी परेशान हो जाता है, और अगर सुसंस्कृति का वातावरण घर में है, पति पत्नी के बीच सामंजस्य बढ़िया है, तो आस पड़ोस ही क्या, दूर दूर तक लोग उसकी मिसाल की निरंतर चर्चा करते रहते हैं और उसके दाम्पत्य जीवन को एक आदर्श के रूप में, अपने दाम्पत्य जीवन को भी सुखमय बनाने का संकल्प लेते रहते हैं। दाम्पत्य जीवन में आखिर किस तरह का हमारा आचरण हो, किस तरह का चरित्र हो, किस तरह का संवाद हो, कैसे हम जीवन जिए, मार्गदर्शन के अंतर्गत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी आदरणीय रानी दीदी यहां उपस्थित है, जो अपने ज्ञान, अपनी साधना, अपने अनुभव और अपनी दृष्टि निरंतर राष्ट्रीय स्तर के तमाम केंद्रों के साथ ही साथ जब कभी भी सांस्कृतिक और सामाजिक इस तरह का संदर्भ आता है, दीदी निरंतर मार्ग निर्देशित करती रहती हैं। और आज उनसे हम इनकी समस्याओं का समाधान प्राप्त करेंगे, और महज इन पांच जोड़ों की समस्या नहीं है, यह अनेक जोड़ों की समस्या होगी जो इन लोगों के माध्यम से आज यहां प्रस्तुत होगी, और उन अनेक लोगों के लिए, उन तमाम गृहस्थों के लिए, तमाम दंपतियों के लिए दीदी का मार्ग निर्देशन आप अनुपालन करें, आप अभ्यास करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। दीदी, गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए पति पत्नी में एक बड़ा ही सुव्यवस्थित तालमेल नितांत आवश्यक है। आखिर दाम्पत्य जीवन के सुदृढ़ होने का आधार गृहस्थ जीवन, और गृहस्थ जीवन में इन लोगों की दिनचर्या कैसी हो, इन लोगों का आचरण, इन लोगों का व्यवहार कैसा हो, ताकि आने वाला समय भी एक आदर्श के रूप में, जैसे हम सीताराम की चर्चा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की चर्चा करते हैं, तो ये तो लक्ष्मी नारायण ईश्वर है, परम पिता है, परम पिता के माध्यम से हम अगर बात करते हैं तो हमारी आत्मा किस तरह से दूसरी आत्मा के साथ तालमेल बैठाते हुए परमात्मा का साक्षात करे, बड़ा ही महत्वपूर्ण गृहस्थ जीवन का यह दाम्पत्य आचरण होता है, और इस पर केंद्रित संबोधन और फिर इनकी समस्याओं का समाधान।
आज हमें बहुत खुशी है कि आप सभी का इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आना हुआ है। हर एक चाहता है कि हमारी परिवार सुखमय संसार बना रहे। सुखमय संसार को बनाने में सुबह से रात्रि तक जो धन उपार्जन का प्रयास किया जाता है, वो भी आप निरंतर करते ही रहते हैं। इसके बावजूद भी रात दिन की मेहनत से जो धन उपार्जन करते हैं, सारा अपने परिवार पर ही खर्च करते हैं, फिर भी परिवार में झगड़े होते हैं, फिर भी असंतोष होता है, फिर भी संस्कारों का टकराव होता है, विचारों का टकराव होता है। इसको मिटाने का एक ही उपाय है, वो उपाय है एक दूसरे का सदा सम्मान करना। अगर हम रिस्पेक्ट देने में कमी करते हैं, एक दूसरे की बात को रिगार्ड देना, एक दूसरे के भाव को समझना और समझ कर चलना, जब हम देने के बजाय लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमको भी सम्मान मिलना चाहिए, हमारी बात को भी महत्व होना चाहिए, तो यहां टकराव हो जाता है। जैसे ट्रैफिक का नियम है, सब गाड़ियां एक रोड पर चलती हैं, ट्रक भी, बस भी, गाड़ियां भी, हर एक का एक ही लक्ष्य है, मुझे किसी से टकराना नहीं है, यही लक्ष्य है ना। हर एक सवारी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कभी स्पीड में चलती है, कभी किसी को साइड दे देती है, आगे जाने देती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी रुक भी जाती है। अनेक प्रकार की विधि अपनाकर वो अपने को दूसरे से टकराने से बचा के चलती है, दूसरे पर डिपेंड नहीं करती कि दूसरे को भी नियम अनुसार तरीके के अनुसार चलना चाहिए। गाड़ी चलाने वाला ये नहीं सोचता, वो कहता है नहीं, मुझे अपने को सेफ करना है। इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में रहते और हर व्यक्ति ये निश्चय कर ले, मुझे प्रसन्नचित रहना है, मुझे सम्मान देना है, मुझे नियम अनुसार समय अनुसार हर कार्य को संपन्न करना है, मेरी जिम्मेवारी है। अगर अपनी जिम्मेवारी को समझकर चले तो हम समझते हैं कि टकराव से बच जाते हैं। जब हम देने की बजाय लेना चाहते हैं और हमको नहीं मिलता तो शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, मन शिकायत से भर जाता है। इतना ही नहीं, बगले का भाव भी जग जाता है और इस प्रकार से एक छोटी छोटी बातें बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। छोटी छोटी बातों से मन मुटाव होते हैं। जब किसी के झगड़े हम सुनते हैं, सुनने के बाद लगता है कि बात कुछ थी ही नहीं, केवल अपने मान सम्मान की बात है और कोई बात नहीं है। इसलिए एडजस्टिंग पावर बहुत बड़ी चीज है। हर एक के साथ एडजस्ट करके चलना, हर एक को सम्मान देकर चलना, हमेशा हर एक के गुण देखना, हर एक के गुणों का वर्णन करना, गुण दर्शन बहुत बड़ी चीज है। अगर एक दूसरे के गुण देखते हैं, कमियां भी तो सब में हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, फिर भी हमारा काम तो उसके गुणों से है। गुण देखते और गुण गाते हैं तो एक ऐसी शक्ति का संचार होता है जिससे गृहस्थ जीवन शांतिमय और निर्विघ्न चल सकता है।
दाम्पत्य जीवन की सुदृढ़ता के लिए दीदी ने ठीक ही बताया कि सामंजस्य शक्ति का निरंतर अभ्यास करना चाहिए और यह आपके सुदृढ़ दाम्पत्य जीवन के लिए एक अमोघ नुस्खा है। हमारे बीच डॉक्टर दंपत्ति उपस्थित हैं और डॉक्टर दंपत्ति दोनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए, चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करते हुए अनेक रोगियों को स्वस्थ करते रहते हैं, लेकिन कदाचित इन दोनों के दाम्पत्य जीवन में भी कभी अस्वस्थता की स्थिति आ जाती होगी, क्रोध आता होगा, टकराव की स्थिति आती होगी, मनमुटाव भी आ जाता होगा। नहीं आता है तो यह बेहतर, लेकिन हम अपने बीच उपस्थित डॉक्टर स्मिता और डॉक्टर विनोद दोनों चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और पूरे प्रताप के साथ अपना कार्य करते रहते हैं। तो जैसे हम सीताराम श्रीमान श्रीमती करते हैं, तो आज हम श्रीमती से शुरू होना चाहते हैं, श्रीमान जी से बाद में पूछेंगे। डॉक्टर स्मिता, आपसे आपका प्रश्न, आपकी समस्या।
मेरा सवाल ये है कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो सुबह से ही हमारा काम मतलब शुरू हो जाता है, ये करना है वो करना है। ईश्वर को याद करने का क्या ऐसा कुछ है दीदी कि बेस्ट टाइम है? मेरा सवाल ये है कि परिवार, काम, बच्चे, सारा कुछ देखते हुए तनाव नहीं हो, इसका कोई शॉर्टकट रास्ता कोई है क्या?
जब भी आप उठें, जब आपकी नींद खुलती है, सबसे पहले आप ये याद करें कि मैं आत्मा हूं और मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है और मैं इस स्टेज पर आज कोई विशेष कार्य करने के लिए अवतरित हुई हूं। किसने भेजा है? मुझे परमात्मा ने भेजा है। मुझे आज विशेष कार्य करना है, मुझे आज सबको सुख देने का कार्य करना है। आपके हाथ में सबके दुख दूर करने की शक्ति है, वो शक्ति के आधार से, वो शक्ति के आधार से आप ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि प्रातःकाल उठते ही पहले उनका ध्यान करें, उनको याद करें। कितनी देर? कम से कम 15 मिनट। आपने बेड से उठे, मुंह हाथ धोकर आप एक स्थान पर बैठ जाएं, 15 मिनट या आधा घंटा आप केवल भगवान से बातें करें, उनके गुण गाएं, उनको याद करें, मन को एक आनंद और शांति और सुख से भर लें। सारा दिन तो मनुष्यों के दुख सुनने हैं आपको, कष्ट सुनने हैं, और उसको मिटाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो केवल दवा से नहीं होगा, उसके लिए जिस दुआ की, जिस आशीर्वाद की जरूरत है, आप परमात्मा के पास बैठकर उसे अपने आप में भर लें। इसके बाद आप उनके कुछ महावाक्य 5-7 मिनट उसे भी पढ़ लें। इसके बाद आप अपनी दिनचर्या शुरू करें। अगर आप ऐसा नियम बनाएं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सारे दिन में भी जब आप सफर कर रहे हैं, अपने घर से कॉलेज तक पहुंचे, अपने घर से क्लिनिक तक पहुंचे, आपको आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है, वो आधा पौना घंटा कोई बात नहीं, परमात्मा से बातें करें, उनकी शक्ति प्राप्त करें। उसके लिए कुछ समय नहीं, उन्होंने तो कहा है मुझे निरंतर याद करो, तो जब जब समय मिलता है उस समय को अपने आप को कछुए की तरह समेट कर, अपनी ड्यूटी से अपने आप को फ्री करके, और आप उस परमात्मा का ध्यान करें, उनको याद करें, उनसे बातें करें। कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है वो भी उनके आगे रख दें, क्योंकि आपको उनके सहयोग से कार्य संपन्न करने हैं। इस तरह से आप महसूस करेंगे कि आप हमेशा उनको अपने पास बुलाती रहती हैं, उनका साथ लेती रहती हैं और आनंदमय रहती हैं। आपके आगे आने वाली समस्या का समाधान उनकी याद से हो जाता है, आप ऐसा महसूस करेंगे। दूसरा, आपने कहा तनाव के बारे में, हम कहते हैं हर एक को आदत हो गई है, हमको बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। ये टेंशन है शब्द बोलना छोड़ दीजिए और अटेंशन रखिए, मुझे ये कार्य समय पर पूरा करना है, मुझे ये जिम्मेवारी को निभाना है। उस जिम्मेवारी को निभाने के अटेंशन को आप टेंशन न कहें। आपको याद रखना पड़ता है मुझे वहां समय पर पहुंचना है, मुझे ये कार्य करना है, इसको आप टेंशन न कहें, ये कर्तव्य बोध है। अगर अटेंशन को यूज करना शुरू कर दें और टेंशन शब्द को छोड़ ही दें, तो आप देखेंगे आपके लाइफ में टेंशन आएगा ही नहीं, और आपकी सोच कभी अपने पर अटेंशन, कभी परमात्मा पर अटेंशन, कभी अपनी ड्यूटी पर अटेंशन, इस तीनों के बीच में आप सदा तनाव मुक्त रह सकते हैं।
और अब हम डॉक्टर विनोद कुमार जी से उनका प्रश्न, हो सकता है सुबह सुबह दोनों की हड़बड़ी हो क्लिनिक जाने की, ऐसे में अपनी टाई खोजने में परेशान हो जाते होंगे, सुबह बफाती चाय न मिले तो परेशान, तो झल्लाहट और श्रीमती की भी अपनी परेशानी, उन्हें भी तैयारी करनी होती है, ऐसे में हो सकता है कि कभी कटु संवाद भी हो जाता होगा। वैसे डॉक्टर साहब नहीं बताया तो अच्छी बात है, कदाचित इससे इतर कोई समस्या है या यही केंद्रीय समस्या है, तो फिर आपकी समस्या समाधान के लिए दीजिए।
मैं पहली बार जब यहाँ सेंटर पे आया था तो काफी उस समय शॉर्ट टेम्पर्ड मेरा बेसिक इंस्टिंक्ट है, तो गुस्सा छोटी छोटी बातों पे आती थी, उसी से तंग आके मैं पहले बार यहाँ पे आया था, और जब से आया हूँ उसके बाद काफी फायदा हुआ है। लेकिन ये जो हम सोचते हैं कि अंदर में गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो एट टाइम्स अभी भी अंदर से गुस्सा होता है, बाहर एक्सप्रेस वाले ही ना करते हो, तो ऐसा कुछ उपाय बता दीजिए कि अंदर में भी गुस्सा ना आए।
क्रोध करने का एक ऐसा संस्कार बन गया है, एक ऐसी नेचर बन गई है कि जो बात हमारे सामने आती है हम उसको सहन नहीं करते, हम किसी का के द्वारा किया हुआ अपमान सहन नहीं करते, या क्रोध आने का कारण है आप चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है, या आपके आगे काम करने वाले आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं करते, इसलिए क्रोध आता है। ये हमेशा मानकर चलना है कि कुछ ना कुछ चाहने के बाद भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। और दूसरी बात, जो आपका स्टाफ है, परिवार है, हर एक की गुणों को देखकर हर रोज उनके गुण गायन जरूर करें। अगर रोज आना हम ये भी कहना आरंभ कर दें कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, सफाई बहुत अच्छी की है, आज बहुत टाइम पर आपने पंचुअल होकर कार्य किया है, तो जिसके द्वारा आप कार्य करा रहे हैं उन्हें अच्छा अच्छा कहने से उनके मन को एक भोजन मिल जाता है, एक शक्ति मिल जाती है, एक एनर्जी मिल जाती है। हम जब कोई गलती करता है तब तो उसको जरूर कहते हैं, लेकिन जब अच्छा करता है तब उसको अच्छा नहीं कहते, ये कहना भूल जाते हैं। हमें जैसे शरीर को भोजन देना, शरीर को टॉनिक वाली हर चीज देना आवश्यक समझते हैं, ऐसे अपनी बुद्धि को भी श्रेष्ठ ज्ञान की खुराक चाहिए, गुणों की खुराक चाहिए। अपनी भी महिमा करें, अपने साथ रहने वालों की भी मन ही मन महिमा करें, ताकि अनायास मुख से निकले। हम कितने भाग्यवान हैं, हमें काम करने वाले कितने अच्छे मिले हैं, हमारे कहने से पहले काम को पूरा करके रखते हैं, कितना एक्यूरेट करते हैं। ऐसे विश्वास के बोल किसी के अंदर शक्ति का संचार कर देंगे, किसके अंदर एक उत्साह भर देंगे, एक उमंग भर देंगे, और उनको आपके द्वारा एक टॉनिक मिलेगा, एक ऐसी विटामिन उनको मिलेगी जिसकी उनकी बुद्धि को जरूरत है।
एक दूसरे में गुणों को देखना और सद्गुणों की प्रशंसा करना, अगर यह हमारी आदत में बात आ जाती है तो निश्चित रूप से हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय और प्रशंसा पूर्ण ढंग से संचालित होता रहेगा। हमारे बीच एक और दंपत्ति ऐसे हैं जिनकी दोनों का अपना अपना कार्य क्षेत्र है। श्रीमती जी अगर विद्यालय में जाती हैं, वहां जाने की परेशानी है, वहां शिक्षा का विस्तार करती रहती हैं, नई पीढ़ी का निर्माण करती हैं, तो पति को श्रीमान जी को कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, वकालत करनी पड़ती है, लॉ का मामला है। लेकिन परिवार, जैसा कि दीदी बार बार कहती हैं, लॉफुल भी हो और लवफुल भी हो तभी हमारा जीवन बड़ा ही सुखमय और सुदृढ़ रहेगा। तो कचहरी की परेशानी और वहां नाना प्रकार के लोग आते हैं गांव से, तो मुकदमे को लेकर आते हैं, मुवक्किल जिस तरह का होता है, हो सकता है कभी वहां पारा गर्म हो जाता होगा या किसी दिन कमाई कम होती होगी तो घर में आकर भड़ास निकालते होंगे, या वक्त पर, और श्रीमती जी भी थकी आती हैं, पति से उम्मीद करती होंगी, तो पहले हम श्रीमती जी की परेशानी जानना चाहते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं शैक्षणिक कार्य में व्यस्त रहने वाली शिक्षिका के रूप में गौरी कुमारी, और गौरी जी आपकी क्या परेशानी है, आप अपनी समस्या दीदी के समक्ष रखें, फिर हम आपके श्रीमान जी रवि प्रताप जी की ओर बढ़ेंगे।
वैसे हम लोग का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय है, लेकिन कभी कभी टेंशन जैसा माहौल हो जाता है ज्यादा वर्कलोड के कारण, इसका कोई उपाय है तो दीदी?
तो टेंशन को मिटाने के लिए एक दूसरे को समझ कर चलना। पहले हम कहते थे थोड़ी सहने की शक्ति चाहिए, अक्सर लोग कहते हैं कि हम सह नहीं सकते, हम कहते हैं आप सह नहीं सकते माना आप कुछ कर नहीं सकते, परिस्थितियां सामने आएंगी और आपको उन्हें पार करना है। सहने का मतलब अपने मन को दबाना नहीं, हर बात को समझ कर चलना। आप यहां से उठेंगे, आगे टेबल है, ठोकर लगेगी, आपकी समझ है कि आप साइड से रास्ता ले लेंगे, बस इतना ही अगर हमको तरीका आ जाए एक दूसरे के विचारों को समझकर, स्वभाव को समझकर, उनकी आवश्यकताओं को समझकर, समय की पाबंदियों को समझकर अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें सहना नहीं पड़ता, और नहीं सहने के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम हमेशा वातावरण को अपने अनुकूल बना रहे हैं, अनुकूल होगा नहीं। आप पढ़ाती हैं, आप जानती हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ता है उसका कभी इम्तिहान भी होता है। इसी तरह से जीवन में आने वाली हर समस्या को ये समझ कर चले, मेरा एग्जाम है, ये मेरा इम्तिहान हो रहा है, हम कितने प्रसन्न चित्त रहकर आई हुई समस्या को पार कर सकते हैं, कितना शांत चित्त रहकर अपने सामने आई हुई समस्या को पार कर सकते हैं। क्रोध या तनाव कोई समाधान नहीं है, क्रोध से काम बिगड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, मनुष्य के मन एक दूसरे से दूर हो जाता है। तो क्रोध समाधान नहीं है, तनाव समाधान नहीं है, प्रेम और शांति ये समाधान है।
कार्यक्षम,
हम अपने हर समस्या का समाधान प्रेम से करें, शांति से करें, इसके लिए एक स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है, एक आध्यात्मिक गाइडेंस की जरूरत है जो हमें लेनी चाहिए, जिससे हम सबके बीच रहते हुए भी अपने आप को लाइट रख सके, उसकी ट्रेनिंग लेना आवश्यक है।
कार्य क्षेत्र में कार्यभार का बढ़ जाना स्वाभाविक है, लेकिन एक कार्य से दूसरे कार्य में हम प्रवेश करें तो हो सकता है अगर सकारात्मक दृष्टिकोण हमने विकसित कर लिया है तो हमारी थकान दूसरे कार्य में लग जाने से दूर हो सकती है और नए उत्साह के साथ उस पर हम लग सकते हैं। दीदी ने एक सूत्र और दिया दाम्पत्य जीवन की सुदृढ़ता के लिए कि हम सहनशीलता की शक्ति को विकसित करें। वकालत करते हैं रवि प्रताप जी, सामाजिक सरोकार के हैं और प्रशासनिक स्तर पर इन्हें बहुत दिनों तक रखा भी गया, कई वर्ष तक रहे कि दाम्पत्य जीवन के झगड़े का निपटारा कैसे किया जाए, कानून से भी, प्यार से भी और उचित मार्गदर्शन देते हुए भी। तो इनका बड़ा कटु मधु अनुभव होगा, वह अनुभव अपनी जगह, यह भी जानते हैं कि परिवार टूटने का कारण क्या होता है, लेकिन इनके अपने व्यक्तिगत जो प्रश्न है, व्यक्तिगत जो समस्या है या उसी समस्या के साथ जुड़ी हुई इनकी भी समस्या है। श्री रवि प्रताप,
परिवार के अंदर में केवल दाम्पत्य पति पत्नी के ही अच्छे संबंध रहे, मधुर संबंध रहे और उसी से उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा ढंग से आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसमें परिवार भी एक करिए और वहां जो एक समस्या आती है जहां कभी सास और पतोहू के बीच में, कभी ससुर और पतोहू के बीच में, कभी बच्चे के कारण, और ये जो समस्या है जो हम ज्यादा अनुभव किए कि ज्यादातर परिवार में ये एक बहुत क्लिष्ट समस्या है और ये समस्या ज्यादा परिवार को पति पत्नी के बीच में और पति पत्नी के अलावे जो पारिवारिक संबंध है उसको कमजोर करता है। अगर इसके संदर्भ में आपका तो कोई सुझाव हो तो हम लोग उसको चाहेंगे जो आपके माध्यम से इसको हम भी जाने और आगे भी जो लोग इसको देख रहे हैं इस कार्यक्रम को भी इसको देखें।
घर के जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी हैं, वो चाहते हैं कि हमारी बहू हमारी इच्छा अनुसार चले। हमारे घर का जो सिस्टम है, हमारे घर का जो तरीका है, उसके अनुकूल चले। अगर वो अपने आप को उस अनुसार ढाल लेती है, उनकी इच्छाओं को महत्व देती है, उनकी राय को सम्मान देती है और वैसा करने की कोशिश करती है, तो शायद वहां प्रेम बना रह सकता है। अगर सास कहती है कि ऐसे चलो और बहू कहती है नहीं हम ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ तनाव होता है, यहाँ झगड़ा होता है। कहने का माल ये है, अगर रिस्पेक्ट देना आता है, छोटे का काम है बड़े को रिस्पेक्ट देना, उनके विचारों को समझना, उनकी इच्छा को समझना, वो किस तरीके से कार्य कराना चाहते हैं, उस भाव को समझना, अगर उस भाव को समझकर उनको राजी करने की लक्ष्य हो, मुझे इनको राजी करना है, मुझे इनकी इच्छा अनुसार चलना है और इनको सुख देना है, अगर उनकी बात नहीं मानते तो उनको सुख नहीं मिलता, उनको दुख होता है। अगर बहू के व्यवहार से बार बार माता पिता को चोट लगती है, उन्हें अपमान महसूस होता है, उनको किसी बात से दुख लगता है, तो परिवार टूट जाते हैं, फिर बेटा और बहू चाहते हैं उनसे अलग जाकर रहें। इसमें सास को भी चाहिए कि ज्यादा अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश ना करें, यहाँ भी एडजस्टमेंट चाहिए, यहाँ भी एक दूसरे को सम्मान दे, उनके द्वारा भी सम्मान मिले और बहू के द्वारा भी बड़ों को सम्मान मिले और बड़ों के द्वारा भी बहू को सम्मान मिले। अगर ऐसा लक्ष्य है, लक्ष्य से तो लक्षण आते हैं, लक्ष्य है मुझे इनको स्नेह देकर, सम्मान देकर, इनकी बात मानकर मुझे इनको सुख पहुंचाना है, मुझे इन्हें संतोष पहुंचाना है, अगर ऐसा लक्ष्य अगर किसी के मन में है तो हम समझते हैं कि वहां ये समस्या नहीं आएगी। फिर भी अगर आती है तो अपनी समझदारी से उसको पार करना।
सास पतोहू और ससुर पतोहू के बीच अंत तक पिस जाता है बेचारा बेटा ही, अर्थात पति महोदय ही, और उसकी परेशानी स्वाभाविक है। पूरी तुम रोज बढ़ाते जाते, इच्छाएं अनंत हैं और उन इच्छाओं को हमें समेटना चाहिए एक सुदृढ़ दाम्पत्य जीवन के लिए, इसलिए भी कि अगर दूसरा पक्ष आमदनी कम करता है तो हमें संतोषप्रद ढंग से जीवन जीने की कला विकसित करनी चाहिए और व्यवहार कुशलता के साथ हम अपने सीमित साधन में भी परिवार को प्रसन्न चित्त रख सकते हैं और जब कभी भी मौका मिले एक दूसरे को स्नेह उपहार देना न भूले। ये छोटी छोटी बातों का निरंतर ध्यान रखने से और एक दूसरे का सम्मान करने से संभवतः हमारी महत्वाकांक्षाएं दब जाती हैं और अंतर्मन हमारा विकसित हो जाता है। गृहस्थ जीवन में दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को समझाते हुए, एक दूसरे के सद्गुणों की निरंतर चर्चा करते हुए और एक दूसरे के प्रति सकारात्मक भाव रखते हुए निश्चित रूप से हमारा प्रेमपूर्ण जीवन एक दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए और लोगों के लिए भी एक आदर्श बनेगा। साथ ही साथ अगर हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश हो जाता है, दाम्पत्य जीवन हमारा संतुलित हो, इसलिए पति पत्नी को एक समानता के साथ चलने की जरूरत है। अगर परिवार एक गाड़ी है तो गाड़ी का हर पहिया संतुलित हो, एक पहिया अगर स्कूटर का हो जाए और एक पहिया अगर ट्रैक्टर का हो जाए तो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, परिवार हमारा बिगड़ सकता है। इसलिए या तो हम ट्रैक्टर के दोनों पहिये बन जाएं और नहीं तो हम स्कूटर के ही पहिया रहें तो सतत हमारी गाड़ी दौड़ती रहेगी और हमारा जीवन कहीं से भी असंतुलित नहीं रहेगा। आप तमाम दंपतियों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ बुजुर्ग दंपति से लेकर नवविवाहिता जोड़ा हमारे बीच है और साथ ही साथ प्रौढ़ उम्र के भी दंपति हैं जिनका जीवन सुखमय है, सोच समझ के साथ है, उनके प्रति बहुत धन्यवाद। जहां झोल झक्कड़ है तो निश्चित रूप से आज जो ज्ञान की दृष्टि आप लोगों ने हासिल की है उससे लाभान्वित होंगे और दीदी मार्गदर्शन के लिए इनके भरोसे एक परिवार चलता है, इनके बूते समाज आदर्श प्राप्त करता है, एक उदाहरण लेता है। इन्हें आपने इनकी समस्याओं का समाधान सुझाया, इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार। ओम शांति।